इस वक्त आस्था के सर पर सिर्फ राजवीर जिंदल को मारने का भूत सवार था, इसीलिए वो उसे जल्द से जल्द पकड़कर उसका पीछा करना चाहती थी और उसकी जान लेना चाहती थी। वहीं अविनाश भी अब राजवीर जिंदल को मारने के लिए अपनी कार में बैठकर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर आहान बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। आहान के शरीर में बेचैनी देखकर ध्रुव उससे पूछता है, क्या हुआ यार, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तब तक रश्मि, आकाश, सुमित और ध्रुव उसके पास आकर खड़े हो गए थे। अरमान एक इम्पॉर्टेंट कॉल में बिजी था। राजवीर से मिलने के बाद उसे इम्पॉर्टेंट कॉल आ गए थे तो वो उसमें बिजी हो गया था। ध्रुव की बात सुनकर आहान बोला, यार मैंने नानी माँ के लिए एक ड्रेस पसंद की थी और उन्हें चेंज करने के लिए भेजा था, लेकिन नानी माँ को गए हुए 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक नानी माँ नहीं आई हैं। अब रश्मि कुछ सोचकर बोली, लेकिन चेंजिंग रूम में तो मैंने आस्था को भेजा था। आस्था के लिए मैंने बड़ा ही प्यारा ड्रेस पसंद किया था तो उसे मैंने चेंज करने के लिए भेजा था, और तुम कह रहे हो नानी माँ को तुमने भेजा था। एक तुम लोग यहीं ठहरो, मैं देख कर आती हूँ। ऐसा बोलकर रश्मि राधिका का हाथ पकड़कर राधिका के साथ चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। वहीं रौनक तो एक जगह जाकर बैठ गई थी। उसे किसी भी सामान में कुछ भी खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो केवल सरसरी सी नजरों से सबको देख रही थी, लेकिन चेंजिंग रूम दूसरे साइड था और आस्था चेंजिंग रूम में ही जा रही थी। लेकिन उसने सोचा कि उसे पहले अरमान को अपनी ड्रेस दिखा देनी चाहिए, अगर अरमान को पसंद नहीं आएगी तो उसे पहनेगी भी नहीं। तो ये सोचते हुए अरमान को ढूंढने के लिए निकली, और ठीक उसी वक्त आहान ने नानी माँ के लिए अपनी पसंद से एक ड्रेस पसंद की थी और नानी माँ को ट्राई करने के लिए उसने चेंजिंग रूम में भेज दिया था। तब तक अरमान भी अपने फ़ोन कॉल कंप्लीट करने के बाद जल्दी ही उन सबके पास आ गया था। जैसे ही अरमान ने सबको एक साथ परेशान देखा, वो सुमित से गंभीरता से पूछता है, क्या बात है सुमित, क्या हुआ है? तब सुमित ने आकाश की ओर देखा। तब आकाश परेशानी भरी आवाज़ में बोला, वो नानी माँ और आस्था भाभी दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अरमान हैरान हो गया और गुस्से से तमतमा उठा और ख़तरनाक आवाज़ में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो यहीं शॉपिंग कर रही थी तुम सबके साथ, फिर कहाँ गई? क्योंकि आस्था के साथ पहले ही एक बार मॉल में हादसा हो चुका था तो इसीलिए सबके सब आस्था के आसपास ही थे, लेकिन आस्था कब निकल गई किसी को एहसास नहीं रहा। राधिका और रश्मि दोनों घबराई हुई वहाँ आईं और हड़बड़ाते हुए बोली, चेंजिंग रूम में ना तो नानी माँ है और ना ही आस्था, कहाँ जा सकती हैं दोनों? तब सब हैरान हो गए। लेकिन तभी ध्रुव कुछ पल सोचकर बोला, लगता है दोनों अपने लिए कुछ ना कुछ अलग से शॉपिंग करने के लिए गई होंगी। आप लोग परेशान मत होइए, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर उन्हें मॉल में चेक करते हैं। ये सोचकर सब जल्दी ही अलग अलग फैल गए और चारों तरफ सब आस्था को ही ढूंढने लगे। वहीं एंजल भी अविनाश को ढूंढ रही थी, क्योंकि अविनाश भी काफ़ी देर से दिखाई नहीं दिया था तो उसे अविनाश की फिक्र हुई। इसीलिए एंजल ने वहां अरमान से बता दिया था कि अविनाश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अविनाश कहीं खो गए हैं। अब सब लोग हैरान हो गए कि तीनों इसी तरह से एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब सब लोग चारों तरफ देख चुके, अब अरमान का बेकाबू गुस्सा चुका था, क्योंकि आज दादाजी ने सिक्योरिटी वालों को भी साथ लाने से मना कर दिया था। सभी लोग उस वक्त फैमिली के साथ आए थे और सभी लड़कों को तो लगा था कि सबके सब लड़के एक साथ हैं तो भला उनके फैमिली पर क्या मुसीबत आ सकती है। सबके सब काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर थे, वो आसानी से हर मुसीबत का सामना कर सकते थे, लेकिन अब तो सबका परेशानी के मारे बुरा हाल हो चुका था कि इस तरह से भला वो तीनों कहाँ जा सकते हैं। तब अरमान ने तिरछी नज़रों से आकाश की ओर देखा और आकाश अरमान की आंखों का मतलब समझ गया था, और जल्दी ही आकाश अब सीसीटीवी रूम की तरफ जाने लगा था। वहीं आहान मन ही मन में सोच रहा था कि काश टाइगर और मारिया दीदी यहाँ होते तो वो दोनों पर अच्छे से ध्यान रखते, उनके रहते तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। मारिया और टाइगर को अरमान ने ऑलरेडी विदेश में भेज दिया था, क्योंकि जब से डेविल किंग की कुर्सी उससे छीनी थी और वापस से अरमान ने वो कुर्सी हासिल की थी, तब से काफ़ी ज़्यादा उनके विदेश का बिजनेस ठप हो चुका था, तो उसका कवर करने के लिए उसने देव के साथ मारिया और टाइगर तीनों को भेज दिया था ताकि वो लोग बाहर का सारा काम संभाल सकें। अब अरमान का दिल धड़कने लगा था, वो सोचने लगा था कि कहीं अबीर सिंह राठौर ने तो उसकी बीवी के साथ कुछ नहीं कर दिया, क्योंकि अबीर ने अरमान से मिलने की बात कही थी, लेकिन अरमान उस दिन राजवीर जिंदल के साथ बिजी था तो इसीलिए वो अबीर सिंह राठौर से मिल नहीं पाया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि कहीं इसी खुन्नस में अबीर ने आस्था को किडनैप तो नहीं कर लिया है। वहीं आकाश जल्दी ही वहां वापस आ गया था और उसने बाहर आकर बता दिया था कि ऑलरेडी सारे मॉल के सीसीटीवी कैमरा बंद है। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, अब तो सबको लगने लगा था कि जरूर आस्था और साथ ही साथ नानी माँ और अविनाश के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। हो सकता है कि आस्था को जब अबीर सिंह राठौर किडनैप करने के लिए लेकर जा रहा होगा उसे वक्त अविनाश देख लिया होगा, इसीलिए वो आस्था को बचाने के लिए पीछे पीछे जाने लगा और नानी माँ भी उसके पीछे पीछे जाने लगी होगी। कहीं ना कहीं सबने इसी बात का अंदाजा लगाया। अब तो अरमान की आंखें गुस्से से लाल सुर्ख हो गई थीं और फटाफट से उसने एक नज़र सबकी ओर देखा था और सबके सब अरमान, सुमित और आकाश अबीर सिंह राठौर के घर की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर आस्था ने देखा कि राजवीर जिंदल ने अपनी कार एक बड़े से विला के सामने रोकी है। वो विला बाहर से ही देखने में एकदम भूतिया सा लग रहा था। अब आस्था ने डिसाइड किया कि वो आज के आज ही राजवीर जिंदल की जान ले लेगी। उसने उस विला से थोड़ी सी दूरी पर पहले ही ऑटो रुकवा दिया और रुककर वो राजवीर को देखने लगी थी कि उसकी क्या एक्टिविटी है, वो कैसे अंदर जा रहा है या घर में कौन कौन है। इस बात का वो दूर से देखकर पता लगाना चाहती थी, इसीलिए वो थोड़ा सा पेड़ की साइड छुप गई थी और उससे पहले उसने ऑटो वाले को किराया देकर उसने वहां से रवाना कर दिया था। और क्योंकि वो पूरा सुनसान इलाका था तो कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। वही अविनाश, जो कि आस्था के निकलने से थोड़ा देर से निकला था, वो भी अब, और उसने भी डिसीजन ले लिया था कि आज के आज ही वो अपने परिवार के खून का बदला लेगा। और इतने सालों तक उसकी बहन उससे दूर रही है, उसका बदला लेगा और आज ही राजवीर जिंदल की जान ले लेगा। तो यही सोचते हुए अब अविनाश राजवीर के विला में जाने का रास्ता खोजने लगा था। वहीं दूसरी ओर आस्था अब छुपते छुपाते हुए राजवीर के घर के पीछे साइड चली गई थी और वहां जाकर उसे एक छोटी सी विंडो खुली हुई दिखाई देती है और वो विंडो के द्वारा झांक कर देखने की कोशिश करने लगी थी। और वो विंडो सीधा राजवीर के बेडरूम में खुलती थी, क्योंकि राजवीर को हमेशा से ही गार्डन की फ्रेश एयर पसंद थी। उसकी बीवी को गार्डन का बहुत ज्यादा पसंद आया करता था, तो अपनी बीवी की खुशी के लिए वो हमेशा उसे विंडो को खोलकर रखा करता था। जैसे ही आस्था वहां गई, वो अंदर झांक कर देखने की कोशिश करने लगी थी कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। अब वही राजवीर, जो कि अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करके आया था, जल्दी ही वो कमरे के अपने बेडरूम में आया।
अब आस्था ने राजवीर को ध्यान से देखना शुरू कर दिया था और उसे देखकर उसके हाथों की नसें तन गई थीं। इस वक्त आस्था को बेहद गुस्सा आ रहा था और वो हर हाल में राजवीर जिंदल की जान ले लेना चाहती थी। अब राजवीर जैसे वहां आया, उसने फटाफट से शॉपिंग के थैले रख दिए थे और गुनगुना रहा था। वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए फिर खुशी भरी आवाज में बोला, मेरी प्यारी स्वीट हार्ट नैना, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, कितने सारे तुम्हारी पसंद के महंगे महंगे सूट लेकर आया हूँ। इन सूट में तो तुम एकदम महारानी लगोगी, एकदम मेरी प्यारी सी ब्यूटिफुल सी वाइफ। ऐसा बोलकर राजवीर चिल्ला चिल्ला कर अपनी बीवी को अपने लाए हुए गिफ्ट की तारीफ कर रहा था और उनके बारे में बता रहा था। वहीं आस्था उसके मुंह से सारी बातें सुनकर गुस्से से उबल पड़ी थी कि हमारे परिवार को तबाह करके ये अपनी बीवी के साथ इतनी हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहा है। आखिरकार ये इंसान इतने सारे लोगों की जान लेने के बाद इस तरह से सुकून से कैसे सो सकता है। साथ लेकिन तभी आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थीं, क्योंकि राजवीर ने जब अपनी बीवी की लाश को अपने ही बेडरूम में रखे फ्रीजर से बाहर निकाल रहा था, उसे निकालकर उसने उसके कपड़े उतारे और अपने लाए हुए नए कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। आस्था तो ये देखकर एकदम पत्थर के जैसे जम गई थी और अचानक उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी कि तभी किसी ने आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। अब आस्था और भी ज्यादा घबरा गई कि अचानक से यहाँ कौन आ गया है। और जैसे उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, तब जिस इंसान ने उसके मुंह पर हाथ रखा था वो कोई और नहीं, उसका ही अपना भाई अविनाश रघुवंशी था। अविनाश ने आस्था को चुप रहने का इशारा किया और वो भी अब अंदर खिड़की से झांकने लगा। और अब तो अंदर का नज़ारा देखने के बाद वो भी पूरी तरह से चौंक गया था और उसके भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन तक दौड़ गई थी। एक इंसान लाश को बड़े ही महंगे खूबसूरत से कपड़े पहना रहा था, साथ ही साथ उसे अच्छे से तैयार कर रहा था, तो ये बात उन दोनों भाई बहन को उस वक्त काफी ज्यादा डरा गई थी। तब अविनाश ने चुपचाप आस्था को वहां से चलने का इशारा किया और बिना राजवीर जिंदल की आंखों में आए छुपकर दोनों वहां से बाहर आ गए थे। अब बाहर आने के बाद आस्था अविनाश की ओर देखकर भड़क कर बोली, मैं आज उस खूनी की जान अपने हाथों से ले लेती, क्यों रोका आपने मुझे, क्यों आए आप यहां। अविनाश भी आस्था की तरह राजवीर के विला की तहकीकात करना चाहता था और जैसे ही वो विला के पिछले साइड वाले इलाके में गया और वहां जाकर उसने देखा कि वहां खिड़की पर आस्था खड़ी हुई है, तो वो भी पूरी तरह से चौंक गया था। लेकिन आस्था का ऐसी हालत में वहां रहना सेफ नहीं था, इसीलिए अविनाश ने राजवीर को मारने का इरादा छोड़ दिया था और आस्था को लेकर सीधा वहां से बाहर निकल आया था। अब आस्था अविनाश पर गुस्सा करते हुए चिढ़ते हुए बोली कि आपको मुझे इस तरह से नहीं रोकना चाहिए था, मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसकी जान ले लूंगी। तब अविनाश आस्था को समझाते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला, मैं जानता हूं गोरी, मैं जानता हूं तू क्या सोच रही है, और मेरी यकीन मानो इस वक्त उसे देखकर मुझे भी उतना ही गुस्सा आ रहा है जितना तुझे आ रहा है। इस इंसान ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद की है, इसे हम मौत तो देंगे लेकिन इतनी आसानी से मौत नहीं देंगे। तुमने देखा वो अपनी बड़ी मरी हुई बीवी से कितना प्यार कर रहा था। हम सबसे पहले सॉलिड प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उस पर वार करेंगे। जैसे ही अविनाश ने ये कहा, आस्था एक पल को शांत हुई थी और सीरियस अंदाज में बोली, आप शायद ठीक कह रहे हैं भाई, हमें उसे बिल्कुल भी नॉर्मल मौत तो देनी नहीं है, ये कहते हुए आस्था बड़ी ही खतरनाक लग रही थी।